कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि भोल हरि भोल हरि भोल जय जय प्रभुपाद 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 जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तर शिला भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथा धाम की जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री मायापुर नदीप धाम की जय श्री गंगा माई यमुना मैया की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय युगधाम हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय शिला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड ऑल ग्लोरियस टू गुरु एंड गौरांग की हरे कृष्णा उसी वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में आप सभी हमारे साथ हाथ जोड़ लीजिए हम मंगलाचरण करेंगे उसके बाद में फिर कथा प्रारंभ करते हैं ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं साग्रजातं सावदेतं सावदूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगनललिता श्रीविशाखानमिताक्ष नमाओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरु भिक्ष कृपा सिंधु भेव च परिधानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि। मोकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात् अहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणम्। आराध्यो भगवान ब्रजेशतन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गिण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम लं प्रेमापमर्दो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं तत्रादरो नापरा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 8 अध्याय 8। तो आज शिला प्रभुपाद समस्त वैष्णवगण आप सबके आशीर्वाद से हम श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ करेंगे और श्लोक संख्या 8 का तात्पर्य है। तो कुल मिलाकर के 6 श्लोक हैं। तो 5 श्लोक जो है मैं उसका श्लोक का उच्चारण और अनुवाद बोलता जाऊंगा और 8वें श्लोक की जो हम पुनरावृत्ति करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा इस विषय पे, जो भक्त लोग पहले इस कथा से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, उनके बारे में बता देते हैं। ये जो अध्याय है क्षीर सागर का मंथन, तो किस प्रकार से क्षीर सागर के मंथन की आवश्यकता पड़ी, तो ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। जब उन्होंने छठे मनवंतर के बारे में कथा करनी प्रारंभ करी और कहा कि छठा मनवंतर भगवान के स्वांश अजित प्रकट हुए और उनके प्रकट्य में जो है सागर का मंथन हुआ, तब जो है परीक्षित महाराज बड़े उत्सुक हो गए सागर मंथन के विषय में जानने के लिए कि क्या वजह से सागर मंथन हुआ और किस प्रयोजन से जो है इसको किया गया। तब जो है परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं उनके इस प्रश्न को सुनकर के और विस्तार से उनको बताते हैं कि किस प्रकार से एक दफ़ा दुर्वासा मुनि जो कि आ रहे थे भगवान के दर्शन करके और उनको सामने से इंद्र जो है अपने हाथी पर बैठे हुए आ रहे थे, तो उन्होंने उनको एक उपहार स्वरूप एक प्रसादी माला भगवान की भेंट की, लेकिन इंद्र जो है उस प्रसादी माला का महत्व नहीं समझ पाए और उन्होंने वो प्रसादी माला हाथी के मस्तिष्क पर डाल दी। हाथी के मस्तिष्क से वो माला हाथी के सूंड पे पहुंच गई और सूंड से उसके पैरों में कुछ ले गई। तो ये दृश्य देख करके दुर्वासा मुनि जो है बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ, तुम मदांध हो गए हो, मद में अंधे हो गए हो, ऐश्वर्य में मंद अंधे हो गए हो और तुम सभी श्रीहीन हो जाओ। तो इस प्रकार से जो है असुर जो है देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं और उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास देवतागण जाते हैं और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं और वहाँ स्तुति होती है। तब भगवान कहते हैं कि ये काल जो है असुरों के लिए है, तुम अभी इसमें विजयी नहीं हो पाओगे, तो तुमको योजना बताता हूँ और तुम क्या करो, असुरों के साथ संधि कर लो। कभी कभी शत्रुओं के साथ भी संधि की जाती है, तो तुम उनके साथ संधि कर लो और सागर मंथन करो। तो इस प्रकार से भगवान सारी योजना समझा देते हैं उनको अर्क सागर मंथन करोगे तो उसमें से अमृत कलश अमृत आएगा और अमृत जो है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। इस प्रकार से अभी तुम उनसे संधि कर लो। तो असुरों को भी ये बात समझ में आ गई कि ये देवता तो वैसे ही शक्तिहीन हो चुके हैं, अमृत मिलेगा तो हम इनसे झपट लेंगे, तो जो ये मौका जो है नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से असुर भी तैयार हो जाते हैं और देवता भी तैयार हैं भगवान के आदेश के अनुसार। तो इस प्रकार से फिर किस प्रकार से जो है वो तैयारी की जाती है। अब सागर का मंथन करना है, क्षीर सागर का मंथन करना है, उसके लिए मंदराचल पर्वत को लाया जाता है। बहुत भारी मंदराचल पर्वत, सोने का पर्वत है, उसको लाते लाते ही देवता और असुर चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भगवान की कृपा से उनको जीवित किया जाता है। गरुड़ जो है पर्वत को लेकर के भगवान के आज्ञा से उसको सागर में स्थापित करते हैं। वासुकी को जो नाग है उसको रस्सी बनाया जाता है, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर। पहले देवता भगवान स्वयं अजित मुख की तरफ चले गए थे, लेकिन असुरों को बात पसंद नहीं आई, तब भगवान मुस्कुराए और पूंछ की तरफ चले गए और देवता मुख की तरफ आ गए। इस प्रकार से जो है वो शुरू होता है, मंथन शुरू होता है, लेकिन मंथन कैसे होगा, वो जो पर्वत है वो तो डूबता जा रहा था, आधार नहीं था। तो भगवान जो है फिर कच्छप रूप में अपने को प्रकट करते हैं, 1,00,000 योजन लंबी, मतलब उसका जो चौड़ाई पीठ भगवान का कच्छप का, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया जाता है और सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष निकलता है, जिसको देख करके देवता और असुर दोनों ठंडे हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भगवान उनको कहते हैं कि ये हलाहल ये सारे जगत का जो विनाश कर देगा, इसको आप शिव जी के पास जाओ, शिव जी जो है आपके ऊपर कृपा करेंगे, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो शिव जी जो है के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शिव जो है उस हलाहल को धारण कर लेते हैं, अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और तभी जो है शिव जी क्या कहलाए, नीलकंठ कहलाए। तो जब शिव जी ने हलाहल को धारण कर लिया, उसके बाद देवता और असुर दोनों प्रसन्न हो गए। ऐसा समय कभी नहीं होता कि एक साथ एक ही स्थिति में दोनों प्रसन्न हो जाएं, देवता भी प्रसन्न हो जाएं और असुर भी प्रसन्न हो जाएं, तो यह स्थिति बड़ी विलक्षण है। तो ऐसी स्थिति में देवता भी प्रसन्न हो गए और असुर भी प्रसन्न हो गए कि ये हलाहल जो है ये किसने, शिवजी ने स्वीकार कर लिया। शिवजी वहां रुके नहीं, शिवजी वहां रुके नहीं, शिवजी अपना हलाहल अपना धारण करके चले गए। अब देवताओं और असुरों में बड़ा उत्साह आ गया, अब दोबारा से उन्होंने जो है मंथन प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले जो बताया गया पहले और दूसरे श्लोक में कि सबसे पहले क्या हुआ, शिव जी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो सर्वप्रथम सुरभि गाय उत्पन्न हुई, ठीक है। तो पहला और दूसरा श्लोक जो है सुरभि गाय के ऊपर है। अब हम तीसरे से जो है श्लोक से मैं पढ़ने जा रहा हूं। ततः उच्च श्वानामा हयो भूच चंद्र पांडुरा तस्मिन् बलि स्प्राहम चक्रे नेन्द्रा ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्वा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। तत एरावतो नामा वारणेन्द्रो विनिर्गता दंत चतुर्विश्वेता हरेर अन भगवतो महिम हरन भगवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा एरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। ए रावण दस्यत्वष्टो दिग् गजा अम अभवंसतः अभ्रमो प्रभृत्यष्टौ च करिण्यास्त्व अभवन नृपः। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ए रावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। कौस्तुभाख्यम अद्भुत रत्नम पद्म रागो महोदधे तस्मिन् मणोस्प्राहम चक्रे वक्षो लंकरणे हरि ततो भवत् परिजाता सुरलोक विभूषणम पुर्यथि अर्थनो यर्थे शश्वत भुवि यथा भवान। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्म राग मणि उत्पन्न हुए। भगवान श्री विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब परिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह परिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। ततश्च अप्सरसो जाता निष्कंठया सुवाससा रमण्या स्वर्ग राम वल्गो गति लीला अवलोकने। अप्सराएं जो स्वर्ग में वैश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। अब हम 8वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो इसके शब्दार्थ पहले कर लेते हैं 8वें श्लोक के, फिर श्लोक की जो है उच्चारण करेंगे। तथा तत्पश्चात च तथा आविर्भूत प्रकट हुई साक्षात प्रत्यक्ष श्री भाग्य की देवी रमा रमा नामक भगवत परा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्णतः अनुरक्त रंजयंती प्रकाशित करती दिशा सभी दिशाओं को कांत्या कांति से विद्युत बिजली सौदामने यथा जिस तरह ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनि यथा ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनि यथा। एक प्रभु जी इसमें से, एक माता जी इसमें से, पश्चात आविर्भूत साक्षात् रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनि यथा, एक माताओं में से। ततश्चाविर्भूत साक्षात् रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनि। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। तब भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोग्य हैं और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। यह विश्व शांति का गुर श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृद मित्र हैं तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश वध जीव श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग हो जाती है। शांति के लिए पहली शर्त यह है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संसारी संपदा के अपने झूठे स्वामित्व के भाव को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। तो श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है वो यहाँ समाप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है मंथन जब प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष के बाद सर्वप्रथम जो है हवर्धिनी यानी कि सुरभि गाय प्रकट होती है। सुरभि गाय के प्रकट होने के पश्चात फिर हमने जो पढ़ा कि उच्च शव जो है नामक वो घोड़ा वो उत्पन्न होता है और उसके पश्चात एरावत हाथी जो है प्रकट होता है। घोड़ा जो है वो बलि महाराज की इच्छा हुई, बलि महाराज ने ले लिया। एरावत हाथी जो है इंद्र को प्राप्त हुआ और उसके बाद आठ हाथी और आठ हथनियां प्रकट हुई जो समस्त दिशाओं में कहीं भी जा सकती थी और कौस्तुभ मणि आई प्रकट हुई और रत्न पद्म जो है वो प्रकट हुआ, वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। उसके बाद पारिजात जो है पुष्प प्रकट हुए तो वो देवताओं के जो लोक हैं स्वर्ग लोक की वो उसका विभूषण है। इस प्रकार से जो है ये उसके बाद में अप्सराएं प्रकट हुईं और अप्सराएं जो हैं उसका भी वर्णन इसमें किया गया है और तत्पश्चात जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं तो लक्ष्मी जी के प्रकट होने पे सब देवता और सारे जितने भी असुर हैं वो बड़े लालायित हो गए हैं। श्री जो है लक्ष्मी सारा जगत उनकी तरफ आकृष्ट रहता है। भगवान की ये संपदा है लक्ष्मी जी, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भगतिंगना। तो भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण हैं तो भगवान सबसे अधिक जो है धनवान है, श्री उनके चरणों की सेवा करते हैं और भगवान समस्त वीरों में वीर हैं, वीरस्य भगवान यशस्वी हैं, भगवान सुंदर हैं उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं और भगवान सबसे अधिक ज्ञानवान हैं और भगवान सबसे अधिक वैरागी हैं। तो ये छह गुण जो हैं भगवान के शाश्वत गुण हैं जो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से तो अब यहाँ पर आज के जो तात्पर्य में है प्रभुपाद जिस बात पे बल दे रहे हैं उस बात पे जो बल दे रहे हैं वो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किस प्रकार से विश्व में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है, आज का जो श्लोक है प्रभुपाद का जो तात्पर्य है इसी बात पे पूर्ण रूप से आधारित है कि किस प्रकार से इस जगत में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। तो प्रभुपाद अपने आज के तात्पर्य में बताते हैं कि शांति का फॉर्मूला कौन सा है, वो भगवत गीता 5:29 भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वम शांतिम रिच्छति। ये शांति का फॉर्मूला है, ये शांति का फॉर्मूला है। तो लेकिन इस संसार में ऐसा कौन होगा जो धन सौंदर्य इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की चाह ना करे। हर व्यक्ति चाह करता है कि मेरे को ये ऐश्वर्य प्राप्त हो, ये धन प्राप्त हो, लेकिन ये जो धन और संपदा है ये भगवान की संपत्ति है। इसी बात को जो है यहाँ समझाया गया है कि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये जो संपत्ति जो भी हमको प्राप्त है ये भगवान की है और भगवान की सेवा में लगने चाहिए, जब तक हम भौतिक चेतना में रहते हैं तब तक कोई संभावना नहीं है कि इस जगत में शांति स्थापित हो जाए। आज सुबह बड़ा सुंदर कोट था, आप में से कुछ ने सुना होगा श्रील प्रभुपाद का, जो सुबह हम कोट पढ़ते हैं तो आज के जो श्लोक से वो मेल खाता है। तो आज का जो वो कोट था वो क्या था, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच की लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूं और बिल्ली सोचती है कि मैं बिल्ली हूं। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को आयरलैंड वासी या अंग्रेज मानता हूं तो मैं कुत्ते से बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं हूं। जैसे हम कुत्तों के बीच की लड़ाई को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच की लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि और आसान नहीं है इस बात को स्वीकार कर लेना और स्वीकार करके फिर उसको अभ्यास में लाना कि जो कुछ मेरे पास है वो भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। नारद जी व्यास देव जी को इस विषय में आदेश दे रहे हैं और बहुत सुंदर श्लोक वो बताते हैं। 1:5:32 क्या बताते हैं नारद जी, एतत् संसुचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यद ईश्वरे भगवती कर्मा ब्रह्मणि भावितम्। तो यहां कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। जब व्यासदेव असंतुष्ट थे सारे शास्त्रों को लिखने के बाद, सारे वेद लिखने के बाद, पुराण लिखने के बाद उनको संतोष नहीं हो रहा था, तो नारद मुनि प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं भागवतम महापुराण की रचना करने के लिए। तब नारद मुनि कह रहे हैं एतत् संसुचितम ब्रह्मस, के एतत् मतलब इतना, संसुचितम मतलब विद्वानों द्वारा निर्धारित है। क्या ब्रह्मस, हे ब्राह्मण व्यास, तापत्रय चिकित्सितम, कि तीन प्रकार के जो ताप हैं इसका उपचार किस प्रकार से संभव है। यद ईश्वरे भगवती कर्मा, यदि भगवान को अपने कर्म समर्पित कर देते हैं, यद ईश्वरे भगवती कर्मा ब्रह्मणि भावितम, तो इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह सकता है यदि हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें और यदि हम अपना जो धन संपत्ति हमारे पास है हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ये सारी धन संपत्ति भगवान की है, भगवान के द्वारा दी हुई है। तो ये अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं होनी चाहिए, इसका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिख रहे हैं। सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा हुआ है, सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं शांति नहीं लाई जा सकती, यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का उपचार व्यर्थ होगा, यानी औषधि खिलाने पर भी रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता यदि भगवान की स्वीकृति नहीं होगी। यदि भगवान की स्वीकृति नहीं हो तो नदी या समुद्र को नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें। और सर्वोत्तम बात तो यह है, प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको, सर्वोत्तम बात तो यह है कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगा दो। सारे भौतिक कर्मों से छुटकारा पालो और अपने आप को भगवान की लीलाओं में, दिव्य लीलाओं में, श्रवण कथाओं में लगा दो। लेकिन आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर, यह संभव नहीं है सबके लिए कि सबको ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, यदि ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है तो मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है इस संसार में, जिन जिन वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। जैसे प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान के समझाने के बाद उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया, अपना इरादा बदल दिया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, यदि कोई उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है, और भगवान तो नारायण हैं या लक्ष्मीपति हैं, अतएव लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। तो संसार में अक्सर देखा गया है, या इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मेरी स्थिति भी क्या थी, या एक आम आदमी की स्थिति क्या होती है, वो सबको मालूम है। हम मंदिर जाना शुरू किया तो हम किस लिए जाते थे? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जो थ्यावे फल पावे दुख मिन से तन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो यही हमने सीखा था हमारे अपने माता पिता से, उनको हमको सिखाया था, बेटा ऐसी आरती किया कर कि सुख और संपत्ति घर में आवे अधिक से अधिक। लेकिन जब हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे, और इस्कॉन मंदिर पहुंचने के बाद सुबह मंगला आरती के बाद वहां पर शिष्टाष्टम गाया जाएगा, और शिष्टाष्टम में जब चौथा श्लोक आता है, क्या आता है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहतुकी। तो दिमाग घूम गया, ये क्या कह रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे? कह रहे न धनम, अरे जब धन ही नहीं चाहिए तो फिर मंदिर क्यों आ रहा हूं मैं? सुख संपत्ति के लिए तो मंदिर आ रहा हूं। ये क्या सिखा रहे हैं? और सच मानो काफी समय तक ये बात गले से उतर ही नहीं रही थी। और जब चैतन्य चरितामृत का ये अपना शिष्टाष्टम पाठ होता था, मैं चौथी लाइन पे साइलेंट हो जाता था, बोलता ही नहीं था मुंह से। मैं कहा इसको निकल जाने दो, न धनम वाली बात निकल जाए। क्यों? कि मन में सदैव इच्छा रहती है, मन में सदैव इच्छा रहती है कि धन की प्राप्ति हो। ये भगवान की सेवा के लिए है, ऐसी बात जब तक वैष्णव का संग नहीं होता, जब तक हम संप्रदाय से नहीं जुड़ते, प्रभुपाद के मिशन से नहीं जुड़ते, तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। साधारण रूप से भी हम देखते हैं कि सामान्य जन जब दीपावली पे पूजा होती है तो लक्ष्मी जी के साथ किसको बिठाते हैं? गणेश जी को बिठाते, नारायण को नहीं बिठाते ना, लक्ष्मी जी को बिठाते हैं। क्यों होता है ऐसा? लक्ष्मी जी के साथ नारायण को क्यों नहीं बिठाते, जबकि सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी ही उनकी जो है शक्ति है, उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन आप अधिकतर पूरे देश में, क्या विदेशों में भी आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी के साथ गणेश को ही बिठाया जाता, उसी की पूजा होती है। क्यों? इसीलिए कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आए और गणेश जी हमको बुद्धि दें कि लक्ष्मी का भोग कैसे करना। गणेश जी से बुद्धि प्राप्त हो जाए कि लक्ष्मी का हम कैसे भोग करें। लेकिन जब हम लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी की सवारी फिर उल्लू है। जब लक्ष्मी अकेली आएंगी तो फिर उल्लू पे आएंगी और उल्लू बना करके हमको चली जाएंगी। लेकिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो फिर वो उल्लू पे नहीं आएंगे, भगवान के साथ गरुड़ पे बैठ के आएंगे, है ना। और जहां नारायण आ जाते हैं फिर लक्ष्मी जो चंचला है उनका रूप, जो उनका, वो उसको छोड़ देती हैं, वो स्थिर हो जाती है नारायण के चरणों में। तो अगर हम लक्ष्मी को अपने घरों में स्थिर करना चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ किसकी पूजा करनी है? नारायण की। ठीक है, तो लेकिन ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम धीरे धीरे समझे, समझने में समय लगता है। और यही बात जो न धनम न जनम न सुंदरेम, ये बात फिर हमको जब हम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करने लगे, जगन्नाथ मंदिर जाने लगे, तो वहां भी ये बात कही गई है, है ना। क्या कहा गया है वहां भी बताते हैं आदि जो है शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में लिखते हैं, न वे याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभम, न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम, सदा काले काले प्रमत पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें। कि न मुझे तो राज्य चाहिए और न कनक माणिक्य और अनेक प्रकार का वैभव चाहिए, और ना ही जो सारा सकल जो जन है वो सुंदर नारी चाहता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, जो प्रमथ पतिना जो भगवान शिव जी हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनका चरित्र गाते रहते हैं, चारों चरित्र गाते रहते हैं, वो जगन्नाथ स्वामी मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। केवल हमको ये चाहिए, नेत्र मार्ग के भगवान पथिक बन जाए। तो जब ये बातें हो रही थी, प्रारंभिक बातें हैं, है ना, जब गाया जाता था, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति रहतु के, तो हमने एक से पूछा, हमारे किसी भक्त से पूछा, सीनियर डिवोटी से पूछा, भाई थोड़ा ये समझा दो बात हमको कि ये क्यों कहते हो कि न धनम न जन्म, ये चलो जन्म भी ठीक है पर धन तो चाहिए ना, ये न धनम क्यों कह देते हो आप? तो फिर उन्होंने बड़ी बात अच्छी समझाई, और वो बात जिस दिन समझ में आ गई उसके बाद में फिर हमने इसको बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या समझाया, बोले देखो जो भक्त नहीं होते वो धन के पीछे भागते हैं, उनको धन चाहिए, उनको धन के ऊपर विश्वास है, और जो भक्त होते हैं वो धनवान के पीछे भागते हैं। और सबसे बड़े धनवान कौन है? भगवान। जब तुमको सबसे बड़े धनवान मिल जाएंगे तो फिर अपनी धन जेब में रख के क्या करोगे? टेंशन पालोगे? तो भक्त जो है धनवान के पीछे भागता है, भागते दोनों हैं। तो सबसे सबसे बड़ा धनवान जो है भगवान है, तो भक्त धनवान के पीछे भागता है और अभक्त धन के पीछे भागता है। तो जिस दिन उन्होंने ये बात हमको समझा दी तो फिर हमारी सारी शंकाएं समाप्त हो गई, सारी शंकाएं समाप्त हो गई, है ना। तो हमको धन नहीं चाहिए, हमको धनवान चाहिए, है ना। तो वही बात यहां पर कही है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, हे भगवान जगन्नाथ आप केवल मेरे नेत्रों नेत्र मार्ग के आप पथिक बन जाओ, मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाओ। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूते ध्रुवा नितिर मतिर ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, धनुर्धर है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है और ध्रुव है, हमेशा रहती है, ऐसे नहीं है कि आज है कल चली जाएगी। ध्रुवा निश्चित मतिर ममा। तो संजय कहते हैं कि यही मेरा मत है। तो यह समुद्र मंथन जो है इससे हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सी हमको शिक्षाएं इससे प्राप्त होती हैं कि किस प्रकार से। लेकिन वास्तव में ये जो है इस संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कितना भी हम समझ लें, हर व्यक्ति जो है भोग भोगने के पीछे ललायित रहता है। लेकिन वास्तव में अगर इन भोगों से हमको छुटकारा पाना है तो हमको महाप्रभु की शरण लेनी होगी। बिना महाप्रभु की शरण लिए हम इस संसारिक भोगों से हमारी वृत्ति संभव नहीं है। कितने भी हम मंदिर घूम लें, कितने भी हम कर लें, लेकिन जब तक महाप्रभु की शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक हम वास्तविक बात को समझ नहीं पाएंगे। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, महाप्रभु भक्त गणेन वैराग्य प्रधान, यहां देखी प्रीतहन गौर भगवान। तो जब भगवान देखते हैं अपने भक्तों को वैराग्य के रूप में तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान महाप्रभु के ऐसे ही सारे भक्त हैं। सनातन गोस्वामी ने अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, रूप गोस्वामी ने अपना पद छोड़ दिया, स्वर्ण मुद्राओं की नौकाओं को लेकर के महाप्रभु के चरणों में डाल दें। सनातन गोस्वामी के सेवक ने एक मुद्रा छुपा लेने पे सनातन गोस्वामी ने उसका परित्याग कर दिया, एक मुद्रा छुपा ली, वृंदावन जा रहा है एक मुद्रा छुपा ली। नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े राजा होते हुए महाप्रभु की शरण ले ली। रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार वालों का 20 लाख रुपए का आमदनी होते हुए उन्होंने उसको जो है छोड़ दिया परिवार को। तो ये वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ कम एक पुरुषा पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा अम्बुधिर यस्तहम प्रपद्ये, के जो कृपा के सागर हैं महाप्रभु मैं उनकी शरण लेता हूं। जो वैराग्य विद्या सिखाने के लिए जो है प्रकट हुए हैं हमारे को। तो ये समुद्र मंथन जो है अनेक हमको शिक्षाएं देता है। लेकिन इसमें एक बात मैं और सोच रहा था, जब समुद्र मंथन की बात आई तो ये समुद्र मंथन तो हमको शिक्षा देता है, लेकिन एक जो है समुद्र मंथन और भी हुआ है, उसके बारे में भी हमें हमेशा सदैव याद रखना चाहिए। वो समुद्र मंथन किसने और कहाँ किया, ऐसा कुछ ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ ऐसा आ रहा था तो एक समुद्र मंथन कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया। अमेरिका जैसे माया के सागर में प्रभुपाद खुद ही मंदराचल पर्वत बने हैं, खुद ही वासुकी नाग बने हैं, खुद ही मंदराचल पर्वत का आधार कच्छप बने हैं, और खुद ही जो है उन्होंने मंथन किया है समुद्र मंथन और इस्कॉन रूपी अमृत कलश को प्रकट कर दिया है। और विष भी स्वयं पिया है, कितना विष पिया प्रभुपाद ने इस्कॉन को प्रकट करने से पहले। वहां के जो हिप्पीज थे कितना सहन किया होगा, तो ये मंथन उन्होंने स्वयं किया। एक ही फ्रिज में मांसाहार भी रखा है, एक ही फ्रिज में उसी फ्रिज में प्रभुपाद का प्रसाद भी रखा है। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, उनका नाम था माइकल, और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी माइकल की, उसका नाम था जैन। जैन तो माइकल और जैन जो हैं वो प्रभुपाद की शरण लिए थे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ दो, विवाह कर लो, विवाह कर लो। तो प्रभुपाद ने उनके विवाह की व्यवस्था की। तो उनके लिए बड़ा जो है वहाँ फीस्ट की तैयारी करी, बड़ा एक अच्छी पार्टी की तैयारी की गई। प्रभुपाद स्वयं लगे हुए थे तैयारी में। तो माइकल की जो गर्लफ्रेंड है जैन, वो आई प्रभुपाद के पास, क्या मैं अपनी सिस्टर को बुला सकती हूँ इस प्रोग्राम में? प्रभुपाद ने कहा बुला लो। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बुलाया, उनकी छोटी सिस्टर थी। तो प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, उनकी सिस्टर भी प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए आ गई किचन में, और उन्होंने एक टॉप पहना हुआ है और एक स्कर्ट पहनी हुई है। एक सन्यासी के साथ में एक लड़की जो है कुकिंग कर रही है, और प्रभुपाद शांत हैं, आराम से कर रहे हैं। तो प्रसाद कुकिंग करते करते वो लड़की पूछती है प्रभुपाद से, मैं जरा स्मोक करके आती हूँ, एक सिगरेट पीनी है मेरे को। प्रभुपाद उसको देखते रह गए, कुछ बोले नहीं, बोले जाओ पी के आओ। वो लड़की सिगरेट पीने चली गई, सिगरेट पी करके आई प्रसाद बनाने के लिए, प्रभुपाद ने रोक दिया, बोले हाथ धो लो, कुल्ला कर लो और फिर अब भोग बनाओ। तो उस लड़की ने किया जैसा प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने सहन किया, और वही लड़की आगे चल के यमुना माताजी बनी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कितना अमृत पिलाया प्रभुपाद ने, कितना अमृत पिलाया, अमृत ही अमृत पिलाया। और प्रभुपाद तो हमको ये सब दे करके चले गए, अब आपको और हमको इसको संभालना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। वो किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट्री अगर कोई कर सकते हैं तो हमारे बीच में गुडाकेश प्रभु जी भी बैठे हैं, मैं उनका प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम। मैं इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु जी अगर कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे तो, या आप प्रभु जी, गुडाकेश प्रभु आप बोलेंगे। दीजिए
हरे कृष्णा। खूब बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने। सो अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद महाराज ने जो हमें अमानत दिया है उनको अगर ठीक ठीक से संभाल करके आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमारा आचरण सुंदर रख करके उनको प्रस्तुत करेंगे तो वस्तुतः जगत का बहुत बड़ा मंगल होगा। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज, जैसे आपने बोला कि स्वयं उन विष पान किया, उसी प्रकार कुछ विष तो हमारे सामने भी आएगा, हमें भी वो तैयारी रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई अच्छे काम को कोई संसार पसंद नहीं करता है, और सदैव हमको कुछ न कुछ बोलेगा ही, पर अगर धैर्य के साथ हम लोग उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर अड़िग रहेंगे तो सुनिश्चित संसार, इसको पूरा संसार ग्रहण करेंगे। जो श्रील प्रभुपाद ने पहले से प्रचार किया है, बस उनको हमें केवल उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उनको आचरण करते हुए अगर सिखाने की हम लोग चेष्टा करेंगे तो वही हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होगा। क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करके हम लोग भी इस संसार से निस्तार को प्राप्त करेंगे, और दूसरे लोग भी उसी चरण चिन्ह पर चल करके वो आगे आने वाले जनरेशनों को भी तारेंगे। ठीक है प्रभु, हरे बोल।
हरे